अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फ़िक्र नज़र सहार टीवी लंदन स्टूडियो से और मैं हूं आपका मेज़बान हुसैन मेहदी। ख़वातीन हज़रात, आज के प्रोग्राम में हम अपने मोसिस मेहमानों से ये जानने की कोशिश करेंगे कि बार बार मुस्लिम सोसाइटीज़ में तज़करा किया जाता है सूद से पाक माशी निज़ाम। तो हमारा सवाल ये होगा अपने मोसिस मेहमानों से कि क्या सूद से पाक माशी निज़ाम कायम किया जा सकता है, इसके क्या फ़वाद हैं और इसे राइज करने की जिम्मेदारी किस पर आयद होती है, और ख़ास तौर पे मगरबी ममालिक में रहने वाले मुसलमान कारोबारी हजरात जो हैं वो किस तरह कोशिश कर सकते हैं कि एटलीस्ट मगरबी ममालिक में जहाँ पे इस्लामिक बैंकिंग भी मौजूद है उससे फ़ायदा उठाते हुए सूद से पाक कारोबारी मामला तय किए जाएँ। मेहमानों का तारुफ करवाना चाहूँगा। हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं जनाब शब्बीर रज़वी, सीनियर फाइनेंस एनालिस्ट। अस्सलाम वालेकुम शब्बीर सर।
वालेकुम सलाम।
और हमारे आज के दूसरे मेहमान हैं बाबर इकबाल, इस्लामिक बैंकिंग में खासा वसी तजर्बा रखते हैं। बाबर अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम।
शब्बीर, आपसे एक गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे कि देखें कोई भी कारोबार जो है उस कारोबारी का प्राइम ऑब्जेक्टिव ही मुनाफा कमाना होता है। कोई भी कारोबार बगैर मुनाफे के नहीं होता। अगर इसमें हम मनी लेंडिंग का कारोबार जो है वो कर लें कि किसी के पास पैसा बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है और वो लोगों को जो है वो अपना पैसा लेंड करते हैं या कर्ज़ा देते हैं या इसे कोई भी नाम ले लें और वो उस पर कुछ मुनाफा कमाते हैं, तो इसमें क्या गैर इस्लामी बात है?
देखिए, बहुत अच्छा सवाल है और बहुत अहम सवाल है। देखिए, जहाँ तक प्रॉफिट का ताल्लुक है, इस्लाम बिल्कुल इजाज़त देता है प्रॉफिट बनाने की। अच्छा, हमें ये देखना पड़ेगा कि इंटरेस्ट जो चार्ज होता है कि मुनाफा है या ग्रीड है। यानी कि एक जो है इंसान को अगर 5% प्रॉफिट मिलता है, वो अगर किसी बिना पर, क्योंकि इस्लाम में काफ़ी फंडामेंटल रूल्स हैं बिजनेस के बारे में, क्योंकि टॉपिक मुख्तलिफ है, मगर सिर्फ मैं कहना चाहता हूँ कि रसूल अकरम भी एक बिजनेसमैन थे।
सही।
एक उनका किरदार जो था बिजनेसमैन का था, यानी कि मदीना से लेके कैरावैन डिमास्कस तक ले जाते थे, अमीन का टाइटल था उनका, लोग उनके यहाँ पैसे रखवाते थे, वो पैसे को वो इन्वेस्ट करते थे। आजकल जैसा कहा जाता है कि इन्वेस्टमेंट मैनेजर थे एक किस्म से, या इन्वेस्टमेंट बैंकर थे वो, उस पर कुछ प्रॉफिट दिया करते थे। वो प्रॉफिट किस तरह से दिया, ये एक वसी टॉपिक है जिस पर रिसर्च करके बात की जाती है। मगर एक मॉडल है हमारे पास के रसूल अकरम बिजनेस करते थे और बिजनेस अपने पैसे से ही नहीं करते थे, लोगों का पैसा भी लेकर वो बिजनेस करते थे और उनको रिटर्न भी देते थे। अच्छा, वो रिटर्न जो है इन्वेस्टर्स के लिए एक्सेप्टेबल था, प्रॉफिट के लिए भी, और प्रॉफिट रसूल अकरम जो है अपना, यानी कि लफ्ज प्रॉफिट प्रॉफिट के तौर पर इस्तेमाल, रसूल अकरम जो है मुनाफा जो है रसूल अकरम अपने लिए भी मुनाफा यकीनी तौर पर रखते थे होंगे। अच्छा, बात ये, हमें बिजनेस चाहे वो बैंकिंग हो, जैसे मैं अर्ज कर रहा था कि एक बिजनेसमैन अगर गैर इस्लामी बिजनेस कर रहा है तो उसे इस्लामी फाइनेंस की क्या जरूरत होती है? देयर इज नो पॉइंट एट ऑल। यानी कि मसलन अक्सर ये कहा जाता है कि मैं जो है इस्लामिक बैंकिंग में हूँ और इस्लामी तरीके से बिजनेस चलाना चाहता हूँ। इसका आप सिंपल तरीका ये देखें, मैंने 100 मिलियन पाउंड्स यहाँ से इस्लामिक बैंकिंग से रेस किए, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज में जाके मैंने गारमेंट फैक्ट्री खोली, लोग खुश हुए, वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट हो गया। मगर मैं ना अपने इम्प्लॉयज़ की देखभाल करता हूँ, ना इनको इंश्योरेंस प्रोवाइड करता हूँ, मेरी फैक्ट्री में आग लग जाती है तो मैं ना कोई कॉम्पेंसेशन देता हूँ उन्हें, कोई नथिंग टू डू।
एथिकल बिजनेस भी आ जाता है, इस्लामिक वैल्यूज भी आ जाती हैं, तो वो बिल्कुल आप बजाय फरमा। अच्छा, मैं चाहूंगा याद
रखा, क्योंकि इस्लामिक बैंकिंग इज एथिकल बैंकिंग। अगर इस्लाम, अगर एथिक्स ना हो, जो लफ्ज अरबी में और इस्लाम में तैयब मीनिंग होलसम, यानी कि इसका सिंपल फॉर्मूला यह है कि अगर मैं मसलन हलाल गोश्त की केंटकी फ्राइड चिकन की जैसी दुकान खोलता हूँ और वही तला हुआ खाना पब्लिक को भेजता हूँ, उनके सेहत के लिए तो मुफीद नहीं है, मगर हलाल है मगर तैयब नहीं है वो, इट्स नॉट होलसम। हमें यह सोचना पड़ेगा एज मुस्लिम बिजनेस पीपल, एज मुस्लिम बैंकर्स और इन्वेस्टर्स, कि हम आया लेबल हमें इस्लामी मिल जाएगा मगर हम तैयब काम कर रहे हैं या नहीं, एथिकल काम कर रहे हैं, दैट इज द बिग क्वेश्चन।
सही, बड़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन, बड़ी ही आपने जो है वो प्रैक्टिकल अप्रोच की बात की कि अगर मॉरली और एथिकली अगर हम अपने ऊपर डिसिप्लिन लागू कर लें तो बहुत सारी चीज़ें शायद वैसे ही सॉर्ट आउट हो जाएं। बाबर, मैं चाहूँगा यहाँ पे, क्योंकि आपका इस्लामिक बैंकिंग में काफ़ी वसी तजर्बा है और अमूमन ये ख्याल किया जाता है कि इस्लामिक बैंकिंग जो है वो सूद से पाक बैंकारी है, अगर हम सूद से पाक माशरे की बात करते हैं तो बैंकिंग सेक्टर जो है वो एक लाजमी फैक्टर है किसी भी माशी निज़ाम का। तो आप क्या समझते हैं कि किस तरह इस्लामिक बैंकिंग जो है वो रोल प्ले कर सकती है एक सूद से पाक माशी निज़ाम कायम करने में? लेकिन हमें याद है कि अभी जब गुज़िश्ता प्रोग्राम में हमने डिस्कशन की थी तो ये भी सामने आया था कि इस्लामिक बैंकिंग की जो प्रोडक्ट्स हैं वो कुछ महंगी प्रोडक्ट्स हैं, तो जब अगर कंपेटिटिवनेस की बात आएगी तो कस्टमर तो जाहिर सी बात है थोड़ी सी सस्ती प्रोडक्ट की तरफ ही जाएगा।
सबसे पहले मैं एक ये बात क्लियर करता चलूँ, जो महंगी प्राइस ऑफ इस्लामिक प्रोडक्ट्स होती है, अब आप जैसे होलसेल का एक 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 लेवल है जिसपे लेट से फॉर इंस्टेंस टेस्को और सेंसबरी काम कर रहे हैं, और एक एक सॉरी रिटेल का एक लेवल है और एक रिटेल का लेवल है जिसपे एक छोटा शॉप ओनर काम कर रहा है।
सही।
अब नाउ द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स दैट दे बाय इन होलसेल, obviously they get a bigger discount on that.
सही, यानी कि टेस्को की purchasing power जाहिर सी बात है एक छोटे corner shop वाले की purchasing power उसका मुकाबला नहीं कर सकती।
तो वो एक जब wholesale में एक एक sizable commodity amount of a certain commodity लेंगे तो obviously it's going to cost them less, तो बेचेंगे भी उसको सस्ता। एक छोटा retailer है वो जब उठा के सिर्फ 10 आइटम्स लाएगा एक प्रोडक्ट के तो उसको ना वो डिस्काउंट्स मिलेंगे, ऑब्वियसली उसकी प्राइस ज़्यादा होगी। तो कमिंग बैक टू इस्लामिक बैंकिंग, इस्लामिक बैंकिंग का जो टोटल पोर्शन है इन वेस्टर्न कंट्रीज दैट इज जस्ट 1% एट द मोमेंट। ऑल्दो टेकिंग मलेशिया फॉर एग्जाम्पल, वहाँ पे इस वक्त इस्लामिक बैंकिंग का साइज ओवरऑल द फिगर्स ऑफ 2014 वाज दैट इस्लामिक बैंकिंग हैड टच्ड अराउंड $2 trillion वर्थ ऑफ इस्लामिक बैंकिंग एसेट्स, उसके अंदर से 600 बिलियन प्लस सिर्फ मलेशिया के। वहाँ पे यही इस्लामिक बैंकिंग सस्ती होगी, वही इस्लामिक बैंकिंग प्रोडक्ट्स यूरोप के अंदर कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव होंगे। तो इसकी ये वजह है कि अभी उस लेवल तक प्रमोट या उस लेवल तक एक्सपैंड नहीं हो सकी कि वो कंपेटिटिव प्राइसेस दे सकें। दूसरी चीज़ जो एक इस्लामिक इकॉनमी, एक इस्लामिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द होल इकॉनमी क्रिएट करने में इस्लामिक बैंक्स क्या रोल प्ले कर सकते हैं, वो एक इस्लामिक इकॉनमी ऑन मे बी अ स्मॉलर स्केल, नॉट लाइक अ ग्लोबल स्केल, ये तो आपका आप कह लें कि 700th to 12th century AD से ये इस्लामिक मार्केट्स का, इस्लामिक इकॉनमीज का कॉन्सेप्ट और इवन जो हम लोग आज इस्लामिक प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं उनका कॉन्सेप्ट तब से चला आ रहा है, पार्टनरशिप्स का, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, चेक जिसको अब आपने एक ब्रॉडर पिक्चर में सुना होगा सुकूक, जो इस्लामिक कोलैटरलाइज्ड डेट ऑब्लिगेशंस की का मुतबादल जो है, आपके सुकूक इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट्स हैं। सुकूक कम्स फ्रॉम द वर्ड सक व्हिच इज अ चेक, तो ये चेक्स, प्रॉमिसरी नोट्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये तो आपके 7th century के चल रहे हैं।
सही,
तो द फाउंडेशन इज देयर, उसको फिर वही बात आ गई जैसे मैं अबाउट ऑफ कॉस्ट ऑफ इस्लामिक प्रोडक्ट्स की बात करता, उसको इस बड़े स्केल पे इंप्लीमेंट करना, ठीक है, दैट इज अ क्वेश्चन।
तो यानी कि एक एक प्रोसेस है उससे इस्लामिक बैंकिंग जो है वो गुजर रही है, बिलाशुबा एक अल्टरनेट जरूर है रिवाइवल बैंकिंग का, लोगों को भी चाहिए कि इसको थोड़ा सा जो है वो प्रमोट करें, और जाहिर सी बात है किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है एक रोल मॉडल की ज़रूरत होती है। शब्बीर रज़वी साहब, मैं यहाँ पे चाहूँगा कि आप बताइए हमारे प्रोग्राम देखने वालों को कि क्या कोई ऐसा इस्लामी मुल्क इस वक्त है जिसको एज ए रोल मॉडल हम यूज़ कर सकें कि वाकई वहाँ पे अगर चलें 100% इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग, सॉरी इंटरेस्ट फ्री इकोनॉमी नहीं है, 90% इंटरेस्ट फ्री इकोनॉमी है।
जैसे बाबर भाई बता रहे थे कि मलेशिया इज़ अ गुड एग्जांपल, वहाँ पर तकरीबन अर्ली 80s से इस्लामिक बैंकिंग और इस्लामिक फाइनेंशियल सर्विसेज, और ना सिर्फ सुकूक उसके साथ जो इंश्योरेंस भी आ जाता है जिसकी हमने बात ही नहीं की क्योंकि मौका नहीं मिला, जिसको फारसी में बीमे कहते हैं, और सूडान है, सूडान भी अर्ली 80s से काफ़ी इस्लामिक प्रोडक्ट्स वहाँ पर हो रही हैं, फिर सऊदी अरेबिया खुद वहाँ पर इस्लामिक प्रोडक्ट्स होती हैं। ईरान इस वक्त जो एनालिस्ट कहते हैं कि हो सकता है वाहिद मुल्क है जहाँ पर ऑलमोस्ट 100% इस्लामिक स्ट्रक्चर्स आर ऑपरेटिंग, मगर वहाँ पर भी ऑब्वियसली क्योंकि ग्लोबल मार्केट से उन्हें डील करना पड़ता है, तो ऑब्वियसली पैसा अगर उन्हें लेना हो तो हो सकता है इंटरेस्ट पे लेना हो, मगर इंटरनली क्योंकि कर्ज हंसना एक कॉन्सेप्ट है इस्लाम में कि कर्ज दिया जाए और उस पर जो है ऑब्वियसली जब जिसको कर्ज दिया जाए जब वो वापस करे तो आपको कुछ रिटर्न देता है, उसको वाजिबात में से नहीं है मगर वो दे तो, मगर अक्सर जो होता है प्रॉब्लम ये होती है कि लोग जब कर्ज हंसना लेते हैं जो लेने वाला होता है वो समझता है कि लफ्ज हंसना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कर्ज उसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो हंसना ही हंसना समझता है। तो ये एक दुश्वारी हो जाती है एट अ प्रैक्टिकल लेवल कि कर्ज हंसना दिया गया तो फिर बाद में वो मिलेगा भी या नहीं, मगर उसके स्ट्रक्चर्स बनाए जा सकते हैं। ऑब्वियसली ईरान बैंकिंग सिस्टम में है कि लोग जो देते हैं बैंक को ऑब्वियसली वो रिटर्न देता है, तो मॉडल तो है। मगर बात ये जो मैं पहले आपसे गुफ्तगू कर रहा था भाई कि हमें सिर्फ जो है टेक्निकल और प्रैक्टिकल इश्यूज को देखने से बेहतर ये है कि हमें एथिकल सिस्टम कहाँ ऑपरेट करना है। जब तक माशरा यानी कि बिजनेस वाइज एथिकल नहीं होता है, मैंने ये देखा यानी कि क्योंकि इस्लामिक बैंकिंग पे जैसे आपने शुरू में इंट्रोडक्शन में कहा कि मैं ना सिर्फ ऑपरेट करता हूँ बट आई राइट अबाउट इट, आई टॉक अबाउट इट, आई गिव लेक्चर्स ऑन इट, तो ये लगता है कि इस्लामिक बैंकिंग जो है सिर्फ एक लेबल लगाया गया उसमें जो रूह चेंज नहीं हुई उसकी। अच्छा, जब तक हम एथिकली ऑपरेट ना करें, क्योंकि यूरोप में भी इस वक्त एक मूवमेंट स्पेशली फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद ये चल रही है कि व्हाट आर कॉल्ड सोशली रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट्स, यानी कि इवन गैर मुसलमान की भी राय ये हो गई है, उसकी फिक्र यह है कि मैं जो है अगर बैंक में पैसा देता हूँ 1,000 पाउंड इन्वेस्ट करने के लिए तो मैं चाहता हूँ कि वो पैसा वहाँ पर इन्वेस्ट हो जो माशरे के लिए मुफीद हो, ऑलराइट। मगर मुसलमान बैंकर्स यानी कि सदमे के साथ मैं कहता हूँ मुसलमान बैंकर, मुसलमान बिजनेस पीपल, मुसलमान ऑपरेटर जनरली आर मोर ग्रीडी देन इवन द कन्वेंशनल वंस। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम।
सही। अच्छा, ये इस पे भी एक काफ़ी गुफ्तगू हो सकती है। अच्छा, दूसरी जो आपने मॉरल उसकी बात की, तो मेरा कुछ जो है वो बिजनेस कम्युनिटी से भी लिंक रहता है, तो वहाँ एक दो साहिबान से मुलाकात हुई जिन्होंने कहा कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह डिसाइड कर लिया कि अब हमने सूद का काम नहीं करना। तो मालूम ये हुआ, फिर मैंने कहा क्या किया आपने, आप लोगों ने फाइनेंस लिया हुआ था बैंक से, उसका क्या किया आपने? तो उन्होंने कहा जी हमने डिफॉल्ट जो है वो अपने आप को डिक्लेयर किया है, जो बैंक का पैसा देना था वो हमारे पास है, उसकी हमने बनवा ली इंस्टॉलमेंट्स और अब हम सूद का काम नहीं करेंगे। तो
माशाल्लाह।
माशाल्लाह इस तरह की भी मिसालें, वही बात आ गई कि आप काम ही किस एक आगाज ही ऐसे कर रहे हैं और नाम इस्लाम का यूज़ कर रहे हैं, तो भाई पता नहीं आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं, इस्लामी काम तो नहीं हो रहा। इसी तरह अगर एसेंस नहीं है, अगर उसके अंदर मॉरली जो है वो लोगों की जो उनका इंटरेस्ट नहीं है और अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मेकिंग है, तो फिर वो कन्वेंशनल से तो कोई मुख्तलिफ नहीं होगा। यहाँ पे हमें एक छोटे से वक्फे का कहा जा रहा है, वक्फे के बाद फिर हम गुफ्तगू को जारी रखें। ख्वातीनों हज़रात हमारे साथ रहिएगा, एक वक्फे के बाद आपके सामने फिर हाजिर होते हैं।
गफलत में डूबा दिल बदल दे खुदाया, फजल फरमा दिल बदल दे या मौला। गुनाहगारी में कब तक उम्र काटू, बदल दे मेरा रास्ता दिल बदल दे या मौला। सुनो मैं नाम तेरा धड़कनों में, मजा आ जाए भोला दिल बदल दे या मौला। रहूं बैठा मैं अपना सर झुका कर, سرور سا عطا کر دل بدل دے مولا یا خدایا فضل فرما دل بدل دے مولا یا مولا خدایا فضل فرما دل بدل دے.
خوش آمدید خواتین و حضرات. بابر گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے میں چاہوں گا کہ آپ جو تھوڑی سی اگر ہم اس حوالے سے گفتگو کو انالائز کریں کہ کیا وجہ بنتی ہے قرضہ لینے کی, کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ سود جو ہے وہ زیادہ تر قرض پہ ہی ادا کیا جاتا ہے اور تو کوئی ایسی وجہ نہیں ہوتی. اچھا جو میں ریسرچ کر رہا تھا پروگرام کے لیے تو ایک اکانومسٹ ہیں جرمنی کی, ان کا ایک پورا جو ہے وہ لیکچر تھا اس حوالے سے کہ کیا وجہ ہوتی ہے لوگ قرض کیوں لیتے ہیں. تو جو جو باٹم لائن تھی, جو نتیجہ تھا, وہ یہ تھا کہ آپ اپنی خواہشات سے مجبور ہو کے قرض در قرض اپنے آپ کو جو ہے وہ جکڑتے جاتے ہیں, اور جو منی لینڈ کر رہا ہے وہ آپ کی آمدنی کا بہت بڑا حصہ جو ہے 50% جو ہے وہ جو ہے وہ لے جاتا ہے. اب دیکھیں جو جس کے پاس پیسہ ہے وہ دے رہا ہے آپ کو, تو اس کا تو اس میں کوئی قصور نہیں ہے. اگر اس کے پاس پیسہ ہے آپ گئے اپنی ضرورتوں کے لیے انہوں نے دے دیا ہے, تو کیا ادھر یہ بات نہیں آتی کہ ہمیں بھی تھوڑا سا کنٹرول کرنا چاہیے کہ نفسانی خواہشات جو ہیں ان کے ہاتھوں مجبور ہو کے جو ہے ہم اپنے آپ کو ایک ویشیس سرکل میں نہ پھنسائیں.
بالکل, میں رضوی صاحب کی جو بات انہوں نے بڑا اچھا ایک پوائنٹ ریز کیا تھا تھوڑی دیر پہلے کہ ایتھکس سب سے بڑا پارٹ ہے اسلامک بینکنگ, اسلامک اکانومی اور ایک اسلامک سوسائٹی کا. تو اب قرضہ پرسنل لیول پہ لیتے ہی لوگ تب ہیں جب وہ اپنی چادر سے تھوڑا سا باہر پاؤں پھیلاتے ہیں.
صحیح.
اور جب وہ ایک انسانی فطرت ہے کہ جب آپ کی وہ ضرورت سیٹسفائی ہو جاتی ہے بڑے آرام سے پے ڈے لون لے کے واٹ ایور, تو وہ پھر آپ کی وہ ضرورت, وہ جو نفس ہے وہ گریڈ, وہ رکتی نہیں ہے. وہ پھر ایک وشس سائیکل بنتا ہے جس میں سے آپ باہر, جیسے آپ نے مینشن کیا کہ وہ
قرض
در قرض کے بعد پھر
سود,
آپ ایک دن سود سے بالکل چھٹکارا حاصل ڈیفالٹ کر کے کر جاتے ہیں. تو
کلین شیٹ,
ایگزیکٹلی. تو یہ صرف بینکرز کی یا اکانومسٹ کی رسپانسبلٹی یا گورنمنٹ انفراسٹرکچر کی رسپانسبلٹی نہیں ہے. یہاں پہ جو پارٹیسپینٹس ہیں آف دیٹ اکنامک سسٹم, ان کی نیت سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ وہ اس کو اڈاپٹ کرنا چاہ رہے ہیں ٹو دا ٹرو سینس آف دیز ٹرانزیکشنز اینڈ دس سسٹم یا نہیں.
صحیح. اچھا شبیر رضوی صاحب, ہم ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں پہ ہمارے اوپر پروڈکٹس کی بھرمار ہے, یعنی کہ ایک چیز ابھی جو ہے وہ آئی نہیں ہوتی, اس کا نیا ماڈل جو ہے وہ نیکسٹ ڈے ہی آیا ہوا ہوتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے جب اتنی آپ کے اوپر ہیوی ایڈورٹائزنگ کی جا رہی ہے اور آپ کے پاس مینز بھی ہیں, پرچیزنگ پاور بھی ہے آپ کی, قرضہ لینا اتنا ہی آسان ہے جتنا کہ پانی کا گلاس جو ہے وہ پینا. آپ کال کریں, پے ڈے لون مل جاتا ہے آپ کو. اچھا لینا بہت آسان ہے, جب اتارنے کی باری آتی ہے تو پھر ذرا مشکلات پیدا ہوتی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یو کے اور ویسٹ میں رہنے والے مسلمان بھی اس چیز کا شکار ہیں؟ باقی معاشرے میں تو ہمیں نظر آتا ہی ہے کہ ان میں بھی ہر طرح کے لوگ ہیں. کچھ ایسے جو ہیں یہاں پہ لوگ ہیں کہ وہ اپنے ابھی بھی کیش پہ ہی وہ بلیو رکھتے ہیں, وہ کریڈٹ کارڈ یوز بھی نہیں کرتے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک بہت بڑی ریزن ہے کہ نفسانی خواہشات کے ہاتھوں مجبور ہو کے ہم قرض در قرض اپنے آپ کو پھنساتے چلے جاتے ہیں؟
دیکھیے, اصل میں کیپٹلسٹ سسٹم جو آپریٹ کرتا ہے وہ یہ آپریٹ کرتا ہے کہ لوگ اور کنسمپشن کریں. بیسک فارمولا اس کا یہ ہے ان سمپل ٹرمز. اچھا مسلمان جو اسپیشلی یورپ میں اور یو کے میں رہتے ہیں, اور میں کافی کریٹیکل ہوں اس ایشو کے بارے میں, وہ میرے خیال میں ہوسٹ کمیونٹی سے زیادہ یعنی کہ مادیات پر دیکھتے ہیں. میرے پاس اگر واکس واگن ہے تو مجھے لیکسس لینا ضروری ہے, میرے پاس اگر 2 لاکھ کا مکان ہے تو 5 لاکھ کا لینا ہے, کیونکہ اور شادی پر پیسہ خرچ کرنا زیادہ ہے. تو ہم جو ہے یقین مانیں مسلمان یورپ میں اور ویسٹ میں جو رہ رہے ہیں وہ और फिर दूसरी बात ये होती है कि यहाँ पर बंदा अगर सोशल सिक्योरिटी पे रह रहा है तो साल में 2000 पाउंड जमा करता है, वो पाकिस्तान जाके बताता है कि मैं लखपति हूँ,
बिल्कुल सही,
समझ रहे हैं?
बिल्कुल
तो
सही।
ये फैक्टर जो ये जो ये मेरे ऑब्जर्वेशन सोसाइटी के बारे में हमारी, राइट, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी सोसाइटी इस तरह से, मगर जनरली बिकॉज ऑफ द कमर्शलिज्म एंड कैपिटलिज्म की बिना पर जो है ये सिस्टम बन चुका है और हम जो है उसके साथ जकड़ गए हैं और उससे निकलने के लिए, और मैंने जो बात की थी, इट्स ऑल डाउन टू एथिक्स, चाहे वो लेंडर की तरफ से हो चाहे वो कंसम्पशन की तरफ से हो, एथिकली अगर कोई चीज़ जो खनात का कॉन्सेप्ट जो इस्लाम में है कि जो चादर के बाहर पैरना निकालने की, खनात का मतलब ये नहीं है कि जुस्तजू ना की जाए, खनात का मतलब यह है कि अगर आप पास जो एबिलिटी है उसमें आप काम करें, ये नहीं है कि मेहनत ना करें,
कि लिव विद इन योर मींस, जितनी चादर है उतना पांव
जी
फैलाएं, जिससे यूके गवर्नमेंट भी इस टाइम गुजर रही है अपने खर्चे बिलियंस के हिसाब से, वो एक अलहदा डिबेट
जी
हो जाती है कि उसमें एथिकली
तो
क्या ठीक है या
जी,
क्या
जी,
नहीं
जी,
है।
जी।
लेकिन ये एहसास इन लोगों को भी है हकूमती सतह पे कि हमने अपने खर्चे जो हैं वो अपने आमदन से ज़्यादा बढ़ाए हुए हैं, बड़े सादा लफ्ज़ों में, और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो इसीलिए जो वज़ीरे ख़ज़ाना है उन्होंने टारगेट दिया है तमाम डिपार्टमेंट्स को कि 20 से 30% आप अपने खर्चे जो हैं वो कम करें। तो हकूमती लेवल पे जब इस तरह के इकदाम किए जाएंगे, अच्छा यहाँ पे बात आ जाती है शब्बीर रिज़वी साहब असराफ की, आप मुसलमान हुक्मरानों पे ज़रा नज़र डालिए। और अभी पिछले दिनों, मैं नाम नहीं लेना चाहता, एक फरमा रवा है, उन्होंने फ्रांस में जो है वो पूरा बीच बुक करवाया है
जी जी जी
और
जी
मालूम हुआ कि 1000 के करीब जो है उनके साथ
नाम
आ
लिया
रहे
जा सकता है,
नहीं
न्यूज़ पे आ
मैं
चुका है तो कोई मसला
थोड़ी
नहीं
सी घबराहट ही होती है। अच्छा, तो कहने का मकसद ये है कि जब एक तरफ ये आलम है,
है
एक तरफ पैसे का ये आलम है कि पूरा बीच आपने अपने लिए बुक करवा लिया, दूसरी तरफ आप मुसलमानों की हालत देखिए कि तालीमी एतबार से बहुत पीछे हैं। पॉजिटिव भी है, ऐसी बात नहीं है, एक्सेप्शंस भी हैं हमारे अंदर, लेकिन अगर हम ओवरऑल देखते हैं तो मुसलमान कंप्लीट बेदारवी का शिकार नज़र आते हैं। तो ऐसे में आप क्या समझते हैं कि किसकी जिम्मेदारी बनती है ये कि पहले तो वो खुद ऐसा एक मॉडल पेश करें कि भाई हम अपनी चादर के में पांव फैला के जो है वो रह रहे हैं, और फिर ताकि बाकी मुसलमान जो है, ख़ास तौर पर मैं चाहूँगा वेस्टर्न कम्युनिटीज़ में, किसकी जिम्मेदारी बनती है?
देखिए वेस्ट में, देखिए फाइनेंशियल क्राइसिस जो हमें हिट हुई थी 7-8 साल पहले, मेरा नज़रिया यह है कि वी आर वॉकिंग टूवर्ड्स अ क्लिफ एट दिस मोमेंट, और मुसलमान जो यहाँ पर रह रहे हैं, आइदर वो क्रेडिट पर रह रहे हैं या चादर से बाहर पैर निकाल के रह रहे हैं, जो कुछ भी तरीका उन्होंने इख्तियार किया है, और फाइनेंशियल क्राइसिस दोबारा आने वाली है, खुसूसन लंदन जैसे शहर में जहां पर यानी कि 1000 पाउंड किराए से कम का आपको जगह नहीं मिलती है।
आप खुशकिस्मत होंगे अगर 1000 पाउंड में मिल जाए।
मैं बता रहा हूँ, यानी
जी
कि सुनने वाले
हाँ।
यानी कि शॉक्ड होंगे कि
हाँ।
यानी कि एक कमरे के लिए आपको 1000 पाउंड देने पड़ते हैं यहाँ पर लंदन जैसे, लंदन से बाहर ऑब्वियसली हालात मुख्तलिफ हैं, मगर कहने का मकसद यह है हुसैन कि जब तक हमें ये शऊर पैदा नहीं होता है के कंजम्पशन जो है हम पर जो है लागू जो किया गया उससे किस तरह से निकला जाए। मुझे कुछ यूके में मसाजिद में हुसैनियाज में इल्म है कि लोग जो अपने से गरीब है उससे मिलना नहीं चाहते हैं, यानी कि ये हमारी सोसाइटी का
यहाँ पे
हाल।
भी वही हाल हो रहा है।
हाँ बिल्कुल,
अच्छा,
यानी कि यकीन माने। अच्छा, और जो यानी कि कंज्यूमर यानी कि लोन जो लेता है उसकी क्या जिम्मेदारी है और लोन देने वाले की, सिर्फ एक छोटा सा वाक्य आपको पेश करूं, उससे पता चलता है कि लेने वाला जो है, जो आपने कहा मार्केटिंग और इसका जो है शिकार होने की बिना पर ले लेता है, उसको पता नहीं होता है। हिंदुस्तान में दिल्ली में सिटी बैंक ने क्रेडिट कार्ड देना शुरू किए थे वहां पर, और दिल्ली में एक जगह है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के नाम से, JNU का एरिया, क्योंकि प्रीमियर यूनिवर्सिटी है दिल्ली की, तो वहां का एरिया जो है पोस्ट कोडिंग से जैसा कहा जाता है ना इंश्योरेंस का और लोन देने का, तो सिटी बैंक ने एनालिसिस की कि यहाँ पर तो रईस लोग रहते हैं, क्रेडिट कार्ड दिए जाए, तो क्रेडिट कार्ड लोगों ने अप्लाई किए, धड़ाधड़ क्रेडिट कार्ड दिए गए, और लोगों को 3-3, 4-4, 5-5 लाख तक की लिमिट दे दी गई क्रेडिट। अच्छा, वहां पर हर एरिया में गरीब एरिया भी होता है, वहां पर काफी गुरबा भी रहते थे, उनको भी 5 लाख के क्रेडिट उन्होंने इस्तेमाल कर दी, अब वो 5 लाख बेचारे जिंदगी भर कमा नहीं सकता है। उस तो बैंक ने अपनी मार्केटिंग के लिए गुरबा को जकेल लिया। आप ये कहेंगे क्यों लिया उसने, भाई अगर बैंक आके कह रहा है कि क्रेडिट कार्ड लो और
हाँ, तो वो तो
उसके
गरीब के लिए तो 5 लाख बहुत बड़ी अमाउंट है।
एग्जैक्टली
अच्छा,
तो इस वजह से बैंकिंग सिस्टम इटसेल्फ has created the problem. Of course, consumers are also liable कि उन्होंने क्यों लिया, मगर वो marketing आप ना करते.
इतना आसानी से अगर पैसा मौजूद है तो कोई भी जाके temptation होती है. अच्छा बाबर, मैं वही सवाल जो शब्बीर रजवी साहब से मैंने किया कि आप क्या समझते हैं, क्योंकि यूके में आप भी रहते हैं, लोगों से मिलते हैं, बैंकिंग से आपका ताल्लुक है, इन्वेस्टमेंट से आपका ताल्लुक है, किसकी जिम्मेदारी बनती है? उलमा की जिम्मेदारी बनती है, बिजनेसमैन की जिम्मेदारी बनती है, या एज ए कम्युनिटी हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम जो है वो एक ऐसा कल्चर प्रमोट करें जिसमें नफसानी ख्वाहिशात पे ज़रा कंट्रोल थोड़ा सा जो है वो आसान हो जाए?
देखिए जी, ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का, बिल्डिंग सोसाइटीज़ का कॉन्सेप्ट, ये जैसे मैंने बताया एक इकोनॉमिक मार्केट, इस्लामिक इकोनॉमीज एंड मार्केट्स का कॉन्सेप्ट 7th century AD से है.
सही.
तो ये बिल्डिंग सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज तभी से अबाउट 13th century AD से स्टार्ट हुई हैं इस्लामिक इकोनॉमीज़ के अंदर ही. तो मेरे ख्याल में इट्स अ कम्युनिटी एफर्ट. अब कम्युनिटी के अंदर कौन स्टार्ट करे, स्टार्ट वो करें जिनको पहले सेल में. इट्स ऑल अबाउट एजुकेशन. आपके फोरम्स और कम्युनिटीज़ के Q&A's कि जितना टाइम हम लोग टीवी देखने में लगा देते हैं, उतना ही टाइम अगर जैसे आज हम 3 लोग बैठे हैं, आज हम 20 लोग बैठे हों, और जिनको कुछ कम इल्म है इकोनॉमिक सोसाइटीज़ का, इस्लामिक इकोनॉमिक सोसाइटीज़ का और इस्लामिक बैंकिंग का, उनको हम कुछ बताएं, वो हमें कुछ ट्रेड का बताएं. तो इट्स अ जॉइंट कम्युनिटी एफर्ट. नोबडी इज़ गोइंग टू स्टेप इन फॉर अस.
अच्छा, ऐसे कोई फोरम्स हैं आपकी नज़र में कि जहाँ पे इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं या इस तरह की माशी मसाइल जो हैं वो डिस्कस होते हों?
मेनली ऑनलाइन ही है अभी तक. ऑनेस्टली मैंने तो कोई ऐसा अटेंड नहीं किया, तो मैं एडवाइस करने में इस वक्त आ गया हूँ और प्रैक्टिकली थोड़ा सा पीछे हूँ. तो ऑनलाइन काफ़ी पार्टिसिपेशन है फोरम्स पे, इवन फेसबुक पे बहुत ऐसे ऐसे एरियाज हैं, बहुत ऐसे पेजेस हैं. सोशल मीडिया बहुत इम्पोर्टेंट है आजकल.
हाँ, उसको पॉजिटिव भी किया जा सकता है,
नेगेटिवली भी किया जा सकता है,
उसको रेडिकलाइजेशन के लिए भी यूज किया, उसे डीरेडिकलाइजेशन के लिए भी यूज किया जा सकता है. बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल होने का. इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है. गुफ्तगू बहुत अच्छी थी और भी मज़ीद चल सकती थी, और कोशिश करेंगे आइंदा किसी प्रोग्राम में इसे दोबारा जो है वो जारी रखें सिलसिले को. ख़वातीनों असरात, अगर आप हमारा प्रोग्राम देखना चाहें तो हमारी वेबसाइट का पता नोट फरमा लिए, urdu.sahartv.ir/video, और उसमें समाजी सेक्शन में जो आप हमारा प्रोग्राम देख सकते हैं. अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिएगा. अल्लाह हाफिज़.